मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज वर्ष 2018 के फरवरी महीने का पहला दिन है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों कल के लाइफ मैनेजमेंट में मैंने फिल्मी गीत पर शब्द पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सामान्यतया हम लोग फिल्मी गीतों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन उस फिल्मी गीत में की दो लाइनों में, मैंने केवल दो लाइनें ही उसकी ली थी, कितनी गंभीरता है, किस तरीके से अलग अलग कोणों से उसे महसूस किया जा सकता है, इसके बारे में मैंने कुछ अपने मन की बातें आपसे शेयर की थी और मुझे इस बात की बेहद खुशी है, सच में बहुत ज्यादा खुशी है। और सच पूछिए तो मैं अपने अंदर से अपने आप को बहुत ज्यादा उत्साहित भी महसूस कर रहा हूं कि इतनी जल्दी आप सब में से कई लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली और सच पूछिए तो बड़ी शानदार प्रतिक्रियाएं मिली। मित्रों मैं जानता हूं कि आप जब शानदार प्रतिक्रिया देते हैं, देखिए प्रतिक्रियाएं पढ़ने के बाद पता लग जाती है कि सामान्य प्रतिक्रिया है या शानदार प्रतिक्रिया है, पढ़ने से पता लग जाता है। और अगर आप शानदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने भी कहीं ना कहीं उसी लेवल पर जाकर के मेरी व्याख्या को महसूस किया है और यह बहुत बड़ी बात होती है। तो अब आप देखिए कि कैसे एक फिल्मी गीत की दो लाइनों की जब हम व्याख्या करते हैं, जब उसके भावार्थ में घुसते हैं, जब उसे समझने की कोशिश करते हैं तो उसका महत्व कितना बढ़ जाता है, उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है। मित्रों इसी बात को आज मैं थोड़े से एक और अलग अंदाज में आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। हमारे यहां कहा गया है, आप लोगों ने खूब सुना होगा और मेरी समझ से आप सबको रट भी गया होगा, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, है ना, ये एक वाक्य है, एक पंक्ति है, एक दोहे की, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ। देखिए अर्थ इसका बहुत ही सामान्य सा है, जिन्होंने खोजा लेकिन कहां खोजा। देखिए खोज हम सब रहे हैं, हम सबको अगर अपनी अपनी सफलताओं की तलाश है तो हम अपनी सफलताएं खोज ही रहे हैं ना, हम किसी भी चीज को पाना चाहते हैं तो ये मान करके चलिए कि हम खोज ही रहे। खोज का मतलब ये कोई वैज्ञानिक आविष्कार से ही नहीं है कि केवल वही खोज कर रहे, आप हम सब भी अपनी अपनी खोजों में लगे हुए हैं। आध्यात्म जगत के लोग शांति की खोज में लगे हैं या ईश्वर की खोज में लगे हैं, एक बहुत ही जो गरीब आदमी है वो अपने पेट भरने के लिए दिन भर के अनाज की खोज में लगा हुआ है, हर कोई किसी न किसी खोज में लगा हुआ है, कोई अपने खोए हुए को पाने में लगा हुआ है, हर कोई खोज में लगा हुआ है। तो लेकिन मिलता किसको है, तीन पाइयां, तीन मतलब उनको, किनको तीन पाइया, केवल उनको ही मिलता है जो गहरे पानी में उतर पाते हैं, जो पानी की गहराई में उतर पाते हैं, केवल उनको मिल पाता है। मित्रों मुझे लगता है कि ये जो पंक्ति है बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है, खासकर सफलता के लिए फिलोसॉफिकल पंक्ति है क्योंकि ये व्याख्या की मांग करती है। देखिए जब हम इसे वैसे पढ़ते हैं, हम लोग के समय में तो स्कूल में एक दो पाठ हुआ करते थे नीति श्लोक के, है ना, उसमें केवल दो दो लाइन चार चार लाइन किसी तरह की कविताएं होती थी और ये हम लोग रट करके जाते थे। और देखिए उस समय के एग्जाम का सिस्टम भी ये था, हालांकि आज भी वही है लगभग कि आपको आप परीक्षा में एक प्रश्न आ जाएगा कि कोई तीन नीति परक दोहे लिखें या इस पर दोहा लिखें और उसमें 5-7 नंबर मिल जाते थे तो रटना पड़ता था, तो रट लेते थे और बहुत अच्छी बात है कि वो आज तक याद है। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय तो लगता है कि इसको रटना है और नंबर पाना है, लेकिन मित्रों पहले तो बात दिमाग में रहती है, धीरे धीरे हमारे अवचेतन में उतर करके सच पूछिए कि हमारे सोचने विचारने और जीने के तरीके में शामिल हो जाती है, शामिल क्या हो जाती है बल्कि हमारे सोचने विचारने और जीने के तरीके को निर्धारित करने लगती है, ये चमत्कार होता है। और बचपन में जब हम पढ़ते हैं तो ये बातें समझ में नहीं आती, ना हमें समझाने की कोशिश की जाती है और मुझे लगता है कि समझाने की जरूरत भी नहीं है, जो चीज अपने आप हो जाए उसके लिए क्या समझाने की जरूरत। तो मित्रों आप देखिए कि ये कितनी खूबसूरत बात है, लोग कहते हैं कि हम आईएएस में कैसे पास हों, हम एग्जाम में कैसे सफल हों, हम बिजनेस में कैसे एक्सेल करें, ये सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन होता क्या है, हमसे जो सबसे बड़ी जो भूल होती है, चूक होती है, वो ये है कि हम सब समुद्र के किनारे तो टहल रहे हैं, किनारे टहल रहे हैं, लेकिन हमारे पैर कहां हैं, रेत पर हैं, रेत पर हैं। और किसी को भी कहिए कि भाई तुम कहां टहल रहे थे, तो कहेंगे समुद्र के किनारे टहल रहे थे। समुद्र शब्द उसमें होगा, लेकिन समुद्र में नहीं टहल रहे हैं हम, समुद्र के किनारे टहल रहे हैं, हमारे पैर रेत में हैं। तो बट नेचुरल है कि जो भी चीजें रेत में पड़ी हुई हैं वो हम अपने लिए इकट्ठे कर सकते हैं, जुटा सकते हैं। कहीं आपको पत्थरों के छोटे मोटे टुकड़े मिल जाएंगे, कहीं आपको घेंघा मिल जाएगा, कहीं सीप की खोल मिल जाएगी, रेत के कण मिल जाएंगे, ये सारी चीजें मिलेंगी और वो हम अपनी थैलियों में इकट्ठे करते रहते हैं और लगता है कि दिन भर में हमने काफी कुछ इकट्ठा कर लिया और देखिए उनको बेच करके आएंगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और इसी तरह से हमारा जीवन चल रहा है, मतलब हमारा जीवन चल रहा है लेकिन सामान्य उपलब्धियों के तहत। मित्रों इसका मतलब यह मत समझिएगा कि मैं किसी असाधारण उपलब्धि की ही बात कर रहा हूं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से चीजों की तलाश कर रहा है, पानी की जितनी गहराई में वो उतर पाता है या नहीं उतर पाता, या तट पर ही वो जितनी लंबी यात्रा कर पाता है उस हिसाब से उसको उतना मिल जाता है और वो उसको अपना फिर मस्त रहना चाहिए। देखिए यदि मैं पानी में नहीं उतरा हूं या उतरने के बाद भी अगर मैं गहरे नहीं गया हूं तो मुझे लगता है कि मुझे शिकायत करने का कोई हक नहीं है कि मेरे हाथ में सीप नहीं आया, मुझे मोती नहीं मिले, या मैंने तो खूबसूरत कोरल के बगीचों की यात्रा ही नहीं की, मैंने उस दृश्य को देखा ही नहीं, कोरल मेरे पास आए ही नहीं। मित्रों कोरल मेरे पास नहीं आएंगे, मुझे कोरल्स के पास जाना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम है कि आप लोगों ने कोरल्स देखे हैं कि नहीं देखे हैं, वो अद्भुत दुनिया है कोरल्स की, अद्भुत दुनिया। मुझे लगता है कि पृथ्वी पर शायद उतनी सुंदर, उतनी रंगीन और उतनी कोमल, कोमल शब्द पे मैं जोर देना चाहूंगा, क्योंकि कोरल में जो वनस्पतियां होती हैं वो बिल्कुल लहराती रहती हैं, मतलब पानी बह रहा है और उन पानी के प्रवाह के थपेड़ों से ही कह लीजिए जो भी गतिशीलता आती होगी उसमें वो कोरल लहराते रहते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि आप कभी फिल्म वगैरह में देखेंगे कि राजा महाराजे बैठे हुए अपने सिंहासन पर और उनके पीछे खड़े होकर के कोई चंवर डुला रहा है, तो कोरल धीरे धीरे चंवर की तरह हिलते डुलते रहते, स्थिर तो रहते ही नहीं है। वो इतने कोमल होते हैं, इतने महीन होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, और रंगों की दुनिया उसकी छटा तो निराली ही है, मतलब अद्भुत है। आंखें नहीं ठहरती, मतलब ठहर जाती हैं तो हटने का नाम नहीं लेती। ठहरती इसलिए नहीं है कि आपको लगता है इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, कहीं ये ना छूट जाए, ये ना छूट जाए। और जहां एक जगह चली जाती है तो लगता है कि यार इसे ही देखते रहो। इसलिए मैं दोनों बातें कही कि आंखें नहीं ठहरती और आंखें ठहर जाती हैं, वो कोरल की दुनिया होती है, बहुत ही खूबसूरत दुनिया। लेकिन दोस्तों उसको पाने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको महसूस करने के लिए थोड़ा अंदर उतरना पड़ता है, क्योंकि समुद्र के अगर आप ऊपर ऊपर तैर रहे हैं तो देखिए समुद्र के ऊपरी सतह पर तो आपको पेड़ पत्तियां मिल रही हैं, डंगाले मिल रही हैं, पानी की बोतलें मिल रही हैं, जो कुछ भी आपने बहा दिया है वो ऊपर बह रही है, तो आप उनको उठा करके ले आइए और फिर कह दीजिए कि साहब समुद्र में तो यही मिलता है, जो मिलता है मैं ले आया, मैं क्या करूं, वहां कुछ और है ही नहीं। मित्रों वहां बहुत कुछ है, लेकिन नीचे तो उतरिए, गहरे पानी पैठ देखिए। उसमें यह नहीं कह रहे कि पानी पैठ, पानी में उतरने की बात नहीं है, पानी में भी ज्यादातर लोग उतर जाते हैं, लेकिन गहरे पानी पैठ बहुत जरूरी है। जब तक आप गहरे नहीं उतरेंगे, क्योंकि देखिए डायमंड जो हीरा है वो आपको चलते फिरते यूं ही फुटपाथ पर पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, वो बहुत गहरे में तैयार होता है। इसलिए कि डायमंड भी टोटली मिलाकर के कार्बन ये कोयला ही है कह लीजिए, वो कभी कोयला ही रहा होगा, लेकिन वो इतनी गहराई में रहता है कि फिर उस पर जो टेम्परेचर उसको जो मिलता है, जितनी गहराई में आप उतरते चले जाएंगे, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर उतना बढ़ता चला जाता है, उसको टेम्परेचर मिल रहा है, वो जितनी गहराई में चला जाएगा सोचिए कि उतना वजन भी बर्दाश्त कर रहा है, गहराई में जाने पर वजन तो बढ़ता जाएगा ना, वो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर रहा है, वो धरती के इतने बोझ को बर्दाश्त कर रहा है, यानी कि दबाव और ताप उन दोनों के बीच में उसकी परवरिश हो रही है उस कोयले की, और फिर वहां दुनिया भर का लावा ये वो पता नहीं क्या क्या होगा, और उसके बीच में धीरे 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 पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है, वो गहरे हो रहा है, वो ऊपर नहीं हो रहा है। तो मित्रों ये जो गहरे पानी पैठ है, मुझे लगता है कि हमें इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लेना चाहिए। केवल इसीलिए ही नहीं केवल हमें उपलब्धियां हासिल करनी है, बल्कि अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में। जैसे मान लीजिए कि आप कोई मूवी देख रहे हैं तो गहरे में पैठ करके देखिए, उसमें खो करके देखिए। अगर दोस्त के साथ आप गपबाजी भी कर रहे हैं तो यार पूरी तरह से उसमें खो जाइए, उसका आनंद लीजिए। ये मत सोचिए कि अरे यार अगर मैं अभी पढ़ाई कर रहा होता तो देखो कितना अच्छा होता, यहां तो बेकार के मेरे आधे घंटे खराब हो गए। नहीं, फिर आप उसमें गहरे बैठिए। अगर आप किसी से सामान्य बातचीत कर रहे हैं, अपनी मां से बातचीत कर रहे हैं, पिताजी से बातचीत कर रहे हैं, किसी के साथ कोई व्यवहार कर रहे हैं, दुकान में सामान खरीदने जा रहे हैं, तो हर जगह गहरे बैठिए। गहरे बैठने को अपने जीवन की आदत बना लीजिए कि मैं तो जहां भी जाता हूं पता नहीं क्या होता है कि गहराई में उतर जाता हूं। आप देखिए कि जीवन की गुणवत्ता कितनी बदल जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस छोटे से वाक्य में सच में इतना बड़ापन है, इतनी गहराई है, ये इतनी ज्यादा जीवन की फिलॉसफी को कई कई एंगल्स से व्यक्त करने की ताकत रखता है। और मित्रों, यही फिर से जो कंट्रोल है कह लीजिए अपने जीवन की गुणवत्ता का, वो हमारे हाथ में आ जाती है कि चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन चीजों के अर्थ क्या लगा रहे हैं, उनसे काम कितना ले पा रहे हैं, उनके वैल्यू को हम कितना बढ़ा पा रहे हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तब सच पूछे तो आपको अपने से भी मोहब्बत होने लगेगी। इसलिए होने लगेगी कि क्योंकि जो बढ़ाने वाला शख्स है वो आप हैं, तो आपको अपने ऊपर एक विश्वास पैदा होगा कि नहीं यार, मैं किसी चीज की वैल्यू को बढ़ा सकता हूं, मैं भी कुछ हूं। ये घमंड की बात नहीं है मित्रों, ये आत्मविश्वास की बात है। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही मैं अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहूंगा। कल हम फिर मिलेंगे और फिर किसी और विषय पर बात करेंगे। आप लोग अपनी अपनी तरफ से अपने अपने विषय सुझाइए, इससे मुझे मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अब इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।